हमें यह स्थिति प्राप्त हुई। अगर हमें वाणी अच्छी मिली है तो हमने ऐसा क्या भला किया होगा जिससे कि वाणी सुस्वर मान करना कैसे मिला होगा, और अगर वाणी कर्कश है कठोर है तो मानिएगा कि हमने ऐसा कौन सा दुस्वर मान कर्म अपने साथ बांध लिया होगा। ये सारी चीजें हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। इसके लिए एकदम बड़ी प्रकृतियों वाला कर्म है। सारे कर्मों में जिसकी फैमिली सबसे बड़ी है वो नाम कर्म है। 93 इसके भेद प्रभेद हैं जिससे कि पूरी बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है और वाणी मिलती है, मन की सामर्थ्य मिलती है। द्रव्य मन भाव मन तो हमारे अपने क्षयोपशम से, ज्ञान के क्षयोपशम से, मनोन्द्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से, नीलांतराय के क्षयोपशम से मिलता है, लेकिन जिसके आलम्बन लेकर के हम विचार करेंगे वो मन भी हमारे भीतर इसी तरह कंस्ट्रक्ट होता है। हम स्वयं अपना शरीर निर्मित करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, रियल एक्चुअल कैसा भी हो, अगर हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो हम बहुत अच्छी चीज कंस्ट्रक्ट कर लेंगे उसमें से। हाँ, वो आर्ट कैसे आएगी, हमारे अपने कर्मों से आएगी। जैसे कि हम किसी अच्छे कारीगर को बुलाते हैं और सामान बता देते हैं कि एक टाइप का सामान है और उसमें इस तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, बहुत अच्छा अगर कलाकार है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर है तो बहुत अच्छी बिल्डिंग बना करके रख देगा, उसमें रंग रोगन भी बहुत अच्छे से कर देगा। बिल्डिंग अपने उसको मटीरियल अच्छा नहीं दिया और जिसको उसका आर्ट नहीं मालूम उसको बहुत अच्छा मटीरियल भी देगा तो वेस्ट कर देगा वो सब। ठीक ऐसे ही हमारे अपने जीवन में भी है। हमारे अपने कर्म जैसे होंगे वैसी सारी सिचुएशंस हमारे चारों तरफ क्रिएट होंगी, और फिर इतने ही जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है उनमें हमारे अपने क्या बिहेवियर है इस पर भी डिपेंड करेगा। हमें जैसा जो कुछ भी मिलता है उसमें हम सुख और दुख अनुभव कैसे करते हैं ये हमारे अपने एटीट्यूड पर निर्भर करता है, जो हम पहले कई बार उस चीज को समझ चुके हैं। चीजों से हमें सुख नहीं मिलता, वे चीजें और उनसे हमारे क्या संबंध है इससे हमारा सुख और दुख रिलेटेड है। हमें अच्छा शरीर मिला है, जरूरी नहीं है कि सुख मिले ही, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये चीज भी इसके साथ जोड़ करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें सब कुछ अपने पूर्व संचित कर्मों से मिल जाने के बाद भी उसमें हर्ष करना है, अभिशाप करना है, आगे के लिए क्या तैयारी करना है, ये सब हमारे अपने वर्तमान के पुरुषार्थ पर निर्भर है। ये ठीक है कि आज हमें जिस तरह का शरीर मिला है उसकी जिम्मेवारी हमारे पुराने कर्मों की है, लेकिन उस शरीर का और उस वाणी का और उस मन का हमें करना क्या है ये आज वर्तमान में हमारे ऊपर निर्भर है। अब जरा विचार करें कि जैसा शरीर मिला है उसके लिए कौन से कर्म जिम्मेदार होंगे, कौन से भाव हमारे जिम्मेदार होंगे, ताकि हम आगे के लिए अपनी जरा जो तैयारी कर रखी है उसमें परिवर्तन कर सकें। क्योंकि अगर मालूम पड़ जाए कि इस तरह की तैयारी करने से और हम जो सोच रहे थे वो चीज नहीं मिलेगी, मालूम पड़ जाए कि हमने तो तैयारी दूसरे क्वेश्चन की कर रखी थी आंसर्स की और लगता है कि शायद कोई और चीज सामने आने वाली है, तो हम जल्दी से अपनी तैयारी बदल सकते हैं। हमारे अपने परिणामों को हम टटोल सकते हैं कि वे किस दिशा में जा रहे हैं और आगे जाकर के हमें कैसी स्थिति और कैसा एनवायरमेंट मिलेगा। सब चिंतित होते हैं इस चीज के लिए कि कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो कैसी कैसी स्थिति मिलेगी, कौन कौन मिलेंगे, कैसा शरीर मिलेगा, शरीर मतलब कैसा मकान मिलेगा रहने का, ये तो है, ये शरीर भी तो मकान है, कैसे रहना मिलेगा और कौन सी जगह मिलेगी, गति क्या है उस जगह का नाम ही तो है जहां हम पहुंच जाते हैं, और कौन सी जाति मिलेगी, एक इंद्री आगे की, दो इंद्री आगे की, तीन इंद्री की, चार इंद्री, पंच इंद्री, कौन सी तैयारी है जिससे कि हम उस प्रकार के शरीर को पाएंगे, एक इंद्री का शरीर मिलेगा कि दो इंद्री का मिलेगा कि पंच इंद्री का, और पंच इंद्री के बाकी जीव का शरीर मिलने वाला है कि देव का शरीर मिलने वाला है कि किसी मनुष्य का शरीर मिलने वाला है या कि हाथी घोड़े का शरीर फॉर्म करेंगे, कौन सा करेंगे, सारा कुछ एक ब्लू प्रिंट की तरह हमारे साथ अटैच अटैच हो जाता है, एक प्रिंट बन जाता है हमारे अंदर इन सब चीजों का। कैसे आश्चर्य होता है जब नाम कर्म की प्रकृतियां पढ़ते हैं कि अगर इसमें जितने बैर हैं तो उतने ही क्यों है और उनकी स्टाइल क्या है, ये सब हमने डिसाइड किया है। शेप साइज सारा कुछ आप यहीं लगनी है तो यहीं लगेगी, और साइज कितनी है प्रपोर्शनेट है कि हम प्रपोर्शनेट है, बॉडी में जो भी चीजें फॉर्म हुई है वो प्रपोर्शनेट हुई है कि नहीं है, शरीर में कैसा सहमन है, कैसे हमारे जॉइंट्स हैं, उनमें कितनी ताकत है, ये सब भी हम अपने कर्मों से डिसाइड करते हैं। इन सब के लिए अलग अलग कर्म है और उन सब के अलग अलग परिणाम है। मजा ये है, इतना बारीक हिसाब कोई अगर बता सकता है तो सिर्फ सर्वज्ञ बता सकते हैं। ये कर्म प्रकृतियां और इनके होने वाले परिणामों को जब हम जानते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारी बुद्धि के बहुत पार है, ये तो कोई बहुत अत्यंत ज्ञानवान ही ये जान सकता है। दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते कभी भी, ट्विंस भी क्यों ना हो, उनके बॉडी कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं चेंजेस जरूर से होंगे। क्यों? क्योंकि दो सापेक्ष जीव हैं, अलग अलग जीव हैं तो अलग अलग ही उनके अपने शरीर की बनावट और बनावट दोनों चीजें होंगी। हाँ, जैसे कपड़े की बनावट और बुनावट दोनों ही, ताना वाना किस तरह का है ये बनावट कहलाती, इसी तरह शरीर में भी किस तरह से हमने ताना बना बनाया है और कैसा उसका शेप है और साइज क्या है, ये सब हम निर्धारित अपने भावों से करते हैं। योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामना तद विपरीतम शुभस्य, दो सूत्रों में आचार्य भगवंतों ने शॉर्ट में सारी चीज कह दी। अगर शरीर के मामले में, गति के मामले में, जाति के मामले में, सौभाग्य दुर्भाग्य यश और अपयश के मामले में अगर सारी चीजें आपको खोटी मिली हैं तो मानी होगा आपने पहले मिली हुई मन वाणी और शरीर का दुरुपयोग किया होगा, ये तय है। बस इतने समझने के लिए अपन डिटेल कर लेंगे उसका समझने के लिए, पर इतनी ही बात है। ये वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामना, अरे हमारा शरीर अशुभ मिला है और भी सारी चीजें अशुभ मिली है तो मानिएगा कि हमने योग यानी मन वचन काय, इन मन वचन काय की सरलता नहीं रखी होगी, इन मन वचन काय का सदुपयोग नहीं किया होगा, इनका दुरुपयोग किया होगा या कि इनके द्वारा कुटिलता की होगी, मन में कुछ वाणी में कुछ शरीर से एक्शन कुछ और, कोई भी चीज हमने दूसरे के प्रति शुभ नहीं करी होगी, मन में खोटा सोचा होगा, वाणी खोटी बोली होगी और शरीर से भी हमने दूसरे का उपकार करने की जगह पर अपकार किया होगा, जिससे कि हमें आज मन वाणी और शरीर की सामर्थ्य सब अशुभ मिली हुई है, हम किसी का कुछ भला कर ही नहीं पाते, हमसे न वाणी से दूसरे का भला होता, न शरीर से दूसरे का भला होता, न हमारे मन में कभी दूसरे का भला करने का विचार आता, सब खोटा ही खोटा आता है। इसके मायने है कि पहले हमने इस तरह का कर्म किया होगा और निरंतर किया होगा, और तब विपरीतम शुभस्य, उससे विपरीत अगर कोई है तो सारी चीजें शुभ मिली होंगी। अगर हम देखें गौर से, अगर हमें अच्छा सुंदर शरीर मिला है तो इसका मतलब है कि हमने दूसरे के लिए जरूर अपने शरीर से मदद की होगी, हाथ सुंदर मिले हैं इसके मायने है कि मैंने दूसरे का उपकार किया होगा, आंखें सुंदर मिली हैं मैंने दूसरे की बुराई में देख करके भलाई देखी हुई होगी इन आंखों से, इसलिए आंख आज मेरी आंखें सुंदर हैं, मेरी आंखों में चमक है, ऐसा है उसका रिलेशन, ऐसा जो भी है उसका। और अगर ये सारी चीजें मैंने खोटी की होंगी, आंखों से सिर्फ दूसरे की बुराई देखी सुन देखी होगी और कानों से दूसरे की बुराई सुनी होगी, तो मानिएगा कान वैसे ही मिलेंगे, स्वदोषे नहीं मिला, बड़े बड़े कान मिलते हैं आपी को ऐसे सूखे जैसे और आंखें तिट्टी सी मिलती, क्यों अपने दोष देखने में तो इतनी सी आंख और दूसरे के दोष देखने में इतनी बड़ी आंख, और वैसे ही शरीर मिलेगा, वैसे ही शरीर मिलेगा, पहले हम जिस तरह के प्राणायाम और जिस तरह का उपयोग इन मन वाणी और शरीर का करते हैं, वैसा ही मन वाणी और शरीर हम यहां पुनः पाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बचपन में जो शरीर मिलता है तो सबको क्या अच्छा लगता है, कभी सोचा? बड़े होने पर वही शरीर अच्छा नहीं मालूम पड़ने लगता कई बार, तो ऐसा हो सकता है कि शीर्यंते इति शरीराणि, शरीर तो ऐसा है कि जीर्णशील होता है, उसका स्वभाव है। हाँ, एक बात तो ये है और दूसरी बात और है, बचपन में चूंकि भोलापन है, चूंकि सरलता है मन वाणी और शरीर की, तब शरीर प्रूफ भी क्यों ना हो भला मालूम पड़ता है। और कई बार शरीर बहुत सुंदर हो और अगर कुटिलता हो सरलता न हो तब भी शरीर सुंदर नहीं मालूम पड़ता। हालांकि ये कर्म पुद्गलता की, ये नाम कर्म की अधिकांश प्रकृतियां शुभ और अशुभ दोनों रूप है, लेकिन इससे जीव का भी संबंध है। इसलिए मैंने दोनों बातें आपसे कह दी कि शरीर अत्यंत सुंदर होने के बावजूद भी यदि दुर्भर नाम कर्म का उदय है तो वो शरीर किसी को पसंद नहीं आएगा, और शरीर अशुभ नाम कर्म के उदय से प्रूफ मिला हुआ है लेकिन शुभ नाम कर्म का उदय है तो सबके लिए भला जान पड़ेगा। इसलिए ये दोनों चीजें ध्यान में रख करके हमारा अपना वर्तमान का भावदेश भी उसमें है, अच्छी और बुरी हमारे गुलाब का फूल सबको अच्छा मालूम पड़ता है, देखिएगा उसका अपना नामकरण देखिएगा, ठीक उसके अकेले नामकरण नहीं है, उसके सुदूर नामकरण भी है साथ में, उसके अवयव तो अच्छे हैं, उसके कलर अच्छे हैं, उसके साथ साथ उसकी सुगंध अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, कांटों के बीच खिले होने के बावजूद भी सुदूर नामकरण में हर आदमी पाने के लिए उत्सुक हो जाता है। ऐसे ही ये कैसे बना होगा, कैसे उस वनस्पतियां कितने प्रकार की हैं उनके भी नामकरण है, कितने कितने प्रकार के लोग हैं उनके अपने अपने नामकरण है, और कैसे ये सब बनते होंगे, बचपन में क्या ये सब अच्छे लगते हैं, छोटे होने पर क्या अच्छे लगते हैं, और बचपन में रास्ते से चले जाने पर क्या हमें कोई गाय का बछड़ा दिख जाता है तो उसकी पीठ थपथपाने का मन होता है, कोई अच्छी चीज दिख जाती तो खड़े होकर के देखने का मन होता है, क्यों होता है ये सब? क्योंकि उस समय चित्त अत्यंत निर्मल होता है, और वो जो चित्त की निर्मलता है वो इन सब चीजों के प्रति हमारे मन को आकृष्ट करती है। और इतने में बड़े होने पर भी कुछ लोग जब समय से भोजन करने आते हैं ये सोच करके कि मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, तब देखिएगा उनके अपने जीवन की सुंदरता, उनके व्यक्तित्व की सुंदरता। इससे यह मालूम पड़ता है, तीन चार बातें हम इसमें से निकाल लें तो शायद हमें आसानी हो जाए आगे बैठने में। पहली चीज कि जो मन वाणी और शरीर हमें मिले हैं उनकी जिम्मेदारी हमारे अपने पुराने कर्मों की है, क्या है? हमने उनका सदुपयोग किया होगा इसलिए अच्छा मिला है, हमने इन मन वाणी और शरीर से अपना स्वार्थ नहीं साधा होगा, परमार्थ साधा होगा, इसलिए ये शुभ मिले हैं, अगर अपना स्वार्थ साधेंगे तो आगे जाकर के ये सब अशुभ मिलने वाले हैं। और इतने में हमने इस सारी सामग्री को उतने महत्व नहीं दिया होगा, शरीर मन और वाणी को उतने महत्व नहीं दिया होगा, बल्कि शरीर मन और वाणी जिस आत्मा को मिली है उसको ज्यादा ध्यान दिया होगा, हमने शरीर मन और वाणी जो मिला है और भी जो सामग्री मिली है उसको उतना उसके संचय का उतना ध्यान नहीं रखा होगा, बल्कि अपने सद्गुणों के संचय का ज्यादा ध्यान रखा होगा, इसलिए अच्छा शरीर मिला है, और इसके विपरीत अगर होगा तो बुरा शरीर मिला। निकाली हमने इतनी बातें इसमें से, हमारे लिए पहले जो हम वाणी शरीर मिला था उसका हमने सदुपयोग किया होगा, सदुपयोग करना मतलब दूसरे के काम आना, दूसरे का ख्याल रखना। वही उदाहरण, मैं समय से भोजन के लिए पहुंच जाता हूं, मुझे दूसरे का ध्यान है, मेरे वजह से उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह है मेहरबानी का सदुपयोग। मुझे वाणी मिली है, मैं बोलूं ऐसा जिससे मुझे बाद में क्षोभ उत्पन्न न हो, मैं काम करूं ऐसा जिससे बाद में मुझे पश्चाताप न हो, और मैं विचार करूं ऐसा जिससे बाद में मेरे मन में ज्ञान न हो। चलिए, हो गई तीनों चीजों का सदुपयोग। हम आसानी से इस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, बस जरा सा विचार करना पड़ेगा कि वाणी मैंने बोली है तो बाद में फिर मुझे अपने ही बोले पर कहीं मन में क्षोभ ना हो कि ऐसा क्या बोला, सामने वाले को किसी क्षोभ में से हुआ, पर मुझे बाद में अपने बोले हुए का क्षोभ ना हो, तो समझ में कि ठीक सदुपयोग किया है वाणी का, और करने के बाद पश्चाताप ना हो, शरीर की क्रिया करने के बाद पश्चाताप ना हो, तो मानिएगा कि शरीर का सदुपयोग किया है, और मन में किसी के बारे में विचार करने के बाद ज्ञान न हो कि मैंने ऐसा क्यों विचार किया। हम मन, वाणी और शरीर का सदुपयोग, इन बातों का ध्यान में रख करके आसानी से करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगर हम आज वर्तमान में अच्छा शरीर नहीं मिला है, तब भी आगे के लिए अच्छे शरीर की तैयारी कर सकते हैं। वर्तमान में अच्छी गति नहीं मिली है, तब हम आगे की अच्छी गति की तैयारी कर सकते हैं, और आगे अच्छी मिली है तो आगे के लिए बुरी की तैयारी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आज मनुष्य गति मिल गई है, सबसे सौभाग्यशाली है चार गतियों में से। हमने कहीं पहले ऐसे मन, वाणी और शरीर की वक्रता नहीं होगी, सरलता ही होगी मन, वाणी, शरीर की, जिससे कि हमें आज मनुष्य गति मिली है। मनुष्य आयु मिलना अलग बात है, देखो, और मनुष्य गति मिलना अलग बात है। ये चारों गतियां निरंतर 24 घंटे बनती रहती हैं, ध्यान रखना, और आयु तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आने पर ही बनती है, पर गति तो हम हमेशा रहते रहते हैं। हमारे अपने मन, वाणी और शरीर का जैसे शुभ और अशुभ परिणाम होगा, वैसी गति, वैसी एक इंद्री, दो इंद्री इत्यादि जाती, और फिर उसके हिसाब से बहुत सारे गति, जाति, शरीर, अंग, पान, निर्माण, बंधन, संघात, सहनम, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुरू उपधान, ऐसे भी शरीर, बारह सिंह का अपना शरीर अपने ही भाग में कारण बनता, चमड़ी गाय की अपनी सुंदर सी पूछ एक बार गाड़ी में डब गए तो कई दिन खड़ी रहेगी जब तक कि सुलह ना जाए, मर जाएगी वहीं पर पैर दे देगी, लेकिन हटेगी नहीं, क्योंकि अपनी पूछ से बड़ा प्यार है, तो उसको एक बार अटक गया है पूछ में झाड़ी में, वहीं खड़ी रहेगी, टूट जाएगा, उसको बहुत दुख है, पर टूटना नहीं चाहिए। अपने ही घात करने वाला शरीर हमें मिल जाता कई बार, और ऐसा शरीर जैसे कि सिंह का दूसरे के घात करने के जैसे नख, ये सब कैसे होता होगा? हमारे अपने मन, वाणी और शरीर की क्रियाओं से होता है। वे शुभ होती है तो सारी चीजें शुभ बन जाती हैं, वे अशुभ होती हैं तो सारी चीजें हमारे जिम्मे अशुभ आती हैं। ये तो ठीक है, लेकिन अशुभ बन जाने के बाद भी हम उनको कैसे शुभ बनाए? अभी तो वर्तमान में सारी चीजें अच्छी मिल जाने पर हम तैयारी बुरे की कर रहे हैं। अगर गौर से देखा जाए, अपने मन, वाणी और शरीर को बिगाड़ करके जो है, और आगे के लिए इन सब की जो सामर्थ्य है उसको बुरा बनाने की कोशिश में है, अगर इस चीज का हम विचार करें। जो शक्ति मिली हुई है उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो सहनहीन मिलेगा, अभी भी हीन सहमन मिला हुआ, वज्र दशम स्नान सहमन यहां किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हम सब ने इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया होगा। शरीर का सदुपयोग है कि इस शरीर से तपस्या करना या कि दूसरे की सेवा करना, और उसमें विशेष रूप से गुरुजनों की सेवा करना, इस शरीर का सदुपयोग अगर करना है। हमने जब भी आचार्य महाराज इस बात को सुनाते हैं कि हनुमान जी को वज्र का शरीर कैसे मिला, भीम को वज्र का शरीर कैसे मिला, पूरे जीवन में उन्होंने अपने शरीर के द्वारा मुनि जनों की भारी सेवा करी। आचार्य शांति सागर महाराज को ऐसे वनिष्ठ उसको शरीर मिला था कि देव मुनि महाराज को एक कंधे पर दाना कंधे पर बिठा के वेद गंगा और दूध गंगा के संगम को पार करते थे। इस जीवन में भी और पहले जीवन में भी उन्होंने ऐसा ही किया होगा। और जब कोई बैल अस्वस्थ हो जाता था तो उससे काम ले लेते थे और उसे बांध देते थे और बैल की जगह बैलगाड़ी में स्वयं काम किया करते थे। इस शरीर का हमने अगर सदुपयोग किया है तो आगे फिर यह शरीर मजबूत मिलेगा। इस वाणी का अगर दूसरे के कल्याण की बात कहने में उपयोग किया होगा तो ही फिर से ये वाणी सुस्वर मिलेगा, अन्यथा फिर दुस्वर मिलेगा। जैसे कि गधे की वाणी और कौए का स्वर कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन कोयल की वाणी सबको पसंद है। क्या किया होगा कोयल ने वैसी वाणी पाने के लिए? सबसे मधुर बोला होगा, इसलिए वाणी मधुर है। बहुत ज्यादा मैंने डिस्कशन करने की चीजें नहीं है, बहुत अनुभव करने की चीजें है। मैं तो सोचता हूं अपने जीवन में थोड़ा सा गौर से एक दृष्टिपात करें सामने तो सब समझ में आता है कि हाँ वाकई में ये सब चीजें ऐसी बनी होंगी और आचार्यों ने वही चीज हमें इशारा किया है, लिखा है। और भी कई कारण हैं, उन पर अपन विचार कर लेते हैं। जब हम अपनी इस वाणी से दूसरे की चुगली करने का काम करते हैं तो पिशुनता जिसको कहते हैं चुगलखोरी, इसकी बात उसको ट्रांसफर करना और वो भी अपनी तरफ से कुछ मिक्सअप करके झूठ मूठ वाणी से मिली और उसका उपयोग कैसे करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। पिशुनता इसके लिए बैठने हैं बैल और शेर में बनने दोस्ती थी, ये बच्चों की कहानी है, बच्चों की उसमें लिखी है। दोनों में अच्छी दोस्ती थी पर किसी को सुहाती नहीं थी। किसी की भी दोस्ती किसी को सुहाती है बताओ? इससे मालूम करते हैं कि हमारा अपना मन कितना कितना विकृत है। किसी का अच्छा कुछ हो रहा है तो हमारे मन में कैसे जैसे आग लग गई, ऐसा क्यों नहीं होता? कैसे मन पाया हमने छोटे मन तो पाया। किसी के बारे में भला तो थोड़ी देर सोचेगा, बुरा बुरा सोचता है। थोड़ी देर तो किसी से प्यार से बोलेंगे जिनसे मेरा स्वार्थ है और बाकी पीछे इस बाणी से चाहे जो बोलते हैं। थोड़ी देर इस शरीर से अपना सार सकता है तो उस शरीर से अच्छा काम करेंगे, बाकी सारे काम ऐसे करेंगे जिससे कि दूसरे का अपकार हो। ये क्या चीज है? नहीं सुहाई नरेंद्री महारानी को तो बिल्कुल नहीं सुहाई। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, कहां से और कहां बैल, इन दोनों की क्या दोस्ती? अरे ब्राह्मी वालों से दोस्ती करो। तो जाकर के और बैल से कहा कि सुनो मालूम है शेर राजा आज आपसे बहुत नाराज है। अरे नाराज क्या है, मैं भी तुम्हें मना दूंगा, हमारी तो दोस्ती है। बोले नहीं नहीं आज तो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे थे वो बोलने का इम्पॉसिबल संभव नहीं है, कर ही नहीं सकते, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है। ठीक है मत करो हमारी बात का विश्वास, पर आप जाकर के देख लेना सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही दूर से देखोगे ना तो दूर पे दिखाई पड़े शेर तो समझ लेना कि तुम्हारी बात सच्ची है, नहीं तो नहीं तो झूठ है। नैमरी ने इस तरह से बैल को जाकर के सलाह दे दी। ऐसी खोटी सलाह देने में अपन बहुत होशियार है। दूसरे के बीच में बैर पैदा करने की आदत अंततः हमें अशुभ मान कर्म में ले जाएगी और दूसरे का मेल मिलाप करने की आदत हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगी। आज तक हमने दूसरे को एक दूसरे के प्रति विलन करने और एक दूसरे से द्वेष उत्पन्न करने का तो काम किया है, लेकिन प्राणी मात्र से प्रीति उत्पन्न हो यह काम नहीं किया। ये परमार्थ का काम है, दूसरा स्वार्थ का काम है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है जीवन में जब इन चीजों को विचार करते हैं पढ़ते हैं। तो अब शेर के पास पहुंच गई लैमड़ी महारानी, वो बैल, अरे क्या तो आपने उससे दोस्ती करी है, कहीं आपकी बरामदी तो है क्या वो? शेर ने कहा कि आज क्या बात है, तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरा इतना अच्छा मित्र है। अरे मेरा तुम्हारा मित्र कितनी तो बुराई करता है तुम्हारी, और फिर भी उसको अपना मित्र बना रहा। लो शुरू हो गया काम, शुरू हो गया। अच्छा क्या कह रहा था? अरे क्या कह रहा था कि मैं तो बस शेर अपने को क्या जंगल का राजा मानते हैं, मेरे जरा दो दो दांत के बजाय तो बता रहे हैं कि तुम बलशाली है। अच्छा ऐसा कह रहा था? हाँ, और अगर आपको विश्वास नहीं हो आप मिल लेंगे दूर से, या आप उसको जरा देर से देखना। हाँ पांच मिनट देखना, जरा देर से दूर से देखना, वो ऐसे सीन करे देखेगा तो समझ जाना कि मेरी बात सच्ची है, नहीं तो झूठी मान लेना। बस दोनों जन को बता दिया, एक से कह दिया कि जरा देर से देखना और दूसरे से कह दिया कि जब ढूंढ के देखेगा तो समझ जाना, और उनसे कह दिया कि सीन इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों इसका मॉरल क्या है, ऐसे दूसरे की बातों में आकर के कभी लड़ना नहीं चाहिए, लड़ने से दोनों की हानि हुई, मित्रता तो खत्म हुई, जीवन भी खत्म हो गया। ठीक, ये तो समझ में आती है बच्चों की कहानी, अपने जीवन में नहीं आती है ना। ऐसे दूसरों से लड़ने से, दूसरों की बुराई करने से बच्चों अपनी ही हानि होती है। बच्चों को समझाते हैं लेकिन ये जो बड़े बच्चे हैं इनके समझ में नहीं आते, जिस दिन समझ में आ रहा है कि ये वाणी और मन इसके लिए मिलाए, ये दाल पेश करने के लिए प्रतिमता है मन वाणी और शरीर की, अरे इस प्रतिमता से तो मेरे को कल मन और वाणी और शरीर जो भी मिलेंगे सब अशुभ ही मिलने वाले हैं, मैं दूसरे का अशुभ नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने हाथ से अपना अशुभ कर रहा हूं। भैया इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती? कह रहे हैं कि अस्थिर चित्त हमेशा चित्त बदलता रहता है। ऐसे रहते हैं कई लोग जिनके मन के तो बड़े मूडी मूडी है, वो यही अस्थिर चित्त है, जरा देर में मैंने क्षण तुष्टम क्षण रुष्टम क्षण भर में दोष रुष्ट है क्षण भर में संतुष्ट है, ऐसा मन लेकर के तो आए। ऐसे अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति और फिर जाकर के और अशुभ नाम कर्म का ही बंधन करते हैं, और झूठे नाक तेल ये भी अशुभ नाम कर्म के बंध में कारण है। आचार्य उदयनंद जी महाराज की सभा में कोई तेरह मेरा बैठा हो तो एक ही सूत्र बोलते हो, वो योगा कृपा अनुसंधान उनसे सुबह सनावन है बोलते ये ठीक बैठो, तेरे मेरे बैठेंगे तो योगों की वक्रता मन वचन काय की वक्रता अगर होगी तो आगे जाकर के अशुभ मिलने वाले हैं सब नाम कर्म, वो यहां पर है। कृत्रिम रत्न इत्यादि का निर्माण करना, मिलावट करना, इससे अशुभ नाम कर्म, झूठी गवाही देना इससे अशुभ नाम कर्म, दूसरों के अंग पांग का छेदन भेदन कर देना अशुभ नाम कर्म, अशुद्ध कठोर वचन बोलना ये भी अशुभ नाम कर्म का बंध हो रहा है। अपने लिए अपना घाटा अपने हाथ से बच्चे को कान पकड़ करके और डांट देते हैं, ठीक है डांटो, हम तो सुधारने के लिए डांट रहे थे, ठीक है वो सुधर जाएगा, आप तो गए, आपका तो निकल गया काम। कठोर वचन आपने बोल करके और उसको बच्चे को समझा भी दिया, आप प्यार से भी समझा सकते थे, प्यार की भाषा से बड़ी कोई भाषा नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि जब हम अपने लोगों के साथ कठोरता से पेश आएंगे तभी तो हमारा दबदबा होगा, तभी तो वो हमारी बहुत पैर जब तक नहीं, बच्चे मानते नहीं बात, पैर से मानते नहीं, हम कितना समझाते हैं हमको, लेकिन वो माने ना माने वो अपना कल्याण करें ना करें हम अपना कल्याण अपने हाथ से कर देते हैं। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि अशुद्ध जो कि सब लोगों के बीच कहे जाने योग्य वचन नहीं है, जो कठोर है मर्मभेदी है, उन वचनों से अशुभ नाम कर्म का ही बंध होता है, और मंदिर की गंध माल दीप धूप इत्यादि हड़प लेना इससे भी अशुभ नाम कर्म का। बताइए देवधन और देवब्रह्म दो प्रकार की होती, वो जो गुल्लक में डालते हैं रसीद कटवाते हैं वो सब देवधन है, और वो जो चावल और चिटक डोला बदाम ये चढ़ाते हैं ये रख देते हैं मंदिर में वो सब देवब्रह्म है, और दाने का भक्षण करना ये दोनों चीजें अशुभ नाम कर्म के लिए कारण बनेंगे। बहुत लोग करते हैं बोली बोल देने के बाद अब रखे हैं पैसे अपने पास, सालों सालों नहीं दे रहे, जितने दिन तक रखे हैं उतने दिन तक अशुभ नाम कर्म का बंद हो रहा, ये अपने मन से नहीं करूं बुरे मानने की बात नहीं है, ऐसे है अब है तो अब क्या करें, बोल दिया कि मैं ऐसा ऐसा करूं और मन कच्चा हो रहा पीछे हट रहा है मैं करना करो कंटिन्यू काम हो जाए, हाँ ऐसे ही रहता भाई। सबसे अच्छा लिखा है कि अगर पॉकेट में है तो बोलो दे परमिशन थो के वापस लौटो, पहले अभी पैसा रखे कल के दिन शाम को क्या पता मन कैसे हो जाए देखो तुरंत, नहीं तो वो देवधन जब से आपने बोल दिया तब से वो देवधन हो गया, आपने कह दिया कि इतने रुपये मेरा बोली में बोल दिया और घर तक चले गए हैं, जितनी देर बोती जाएगी उतनी देर आप उस देवधन को जो बोला हुआ है 10,000 बोल दी तो अब वो देवधन आपके पास रखे हैं, और उसको जितने दिन तक रखे रहोगे उतने दिन तक परमान अगर नहीं देने के बन गए दे दूंगा क्या फर्क पड़ता, कौन खाने जा रहा हूं दे तो दूंगा आवाज थोड़ी दे दूंगा दे दूंगा तो मुझे जरा टाइम हो, एक दूसरे अपने सुख सुविधा के साधने में तो लगे हैं इस देवधन को और दे नहीं गए हैं, 4 दिन बाद देंगे ये 100 अशुभ नाम कर्म के बाद। कभी राम सार पढ़िएगा कुंभकंड स्वामी का, इसमें इसके बारे में बहुत डिटेल लिखा हुआ है, एक ही फैमिली हमने अभी तक देखी अपने जीवन में और भी होंगी, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन जितना उतना बता रहा हूं आप जल्दी से आपको लगे कि सिर्फ एक की बढ़ाई कर रहे हैं, जो बढ़ाई करने लायक है वो थे उनके ऐसा अपने जीवन में भी होना चाहिए, एक फैमिली मिली उनके नियम है कि आपने जितने पैसे सभा में बोले हैं या तो वहां लेकर के जाए सो वहीं दे के आए, या कि पहला काम घर लौट करके जितने बोले हैं उतने सोने से पहले निकाल दो, घर में दूसरे दिन रखा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जबलपुर में कलश की बोली ले ली 1.5 लाख रुपए की और उत्ते तोड़ने की कोई नहीं जाता पॉकेट में, बीते साथ रख सबसे पहले गड्डी बांधी उत्ते पैसे की एक तरफ रखी फिर उसके बाद दूसरा काम, और वहां से जाकर के पहुंच गए कि ये दोनों संभालो, उनने कहा हम लेने नहीं आए, हम भगी जा रहे हैं पैसे जहां में काम हुआ ले लेंगे, कहने नहीं हम नहीं जानते आप जो करना वो करो जैसे संभालना आप संभालो हम नहीं रखेंगे अपने घर में ये 1 रुपये आप रखो, कहते कल के दिन मेरे मन बदल गए और इन रुपयों को मैं अपने 5 इंद्रिय मन के भोगों में उपयोग करने लगा और फिर बाद में मेरे पास देने को नहीं फिर मुश्किल में पड़ गया, इसलिए जो सामग्री हम अपने मन वचन काल से सोच करके एक बार और चाह देते हैं उसके प्रति फिर अपने मन में कलुषता नहीं आनी चाहिए कुटुंबता नहीं आनी चाहिए, नहीं देने का भाव अगर थोड़ा भी मन में आ गया दिल से देने का भाव आ गया सब अशुभ नाम कर्म, ईटों का भट्टा इत्यादि लगवाना और ऐसे कर्म करना जिससे बहुत हिंसा होती है आगे जाकर के अशुभ नाम कर्म का बंद होगा, इतना ही नहीं सबके ठहरने के स्थानों को नष्ट करवा देना, अच्छे लगे हुए उद्यान इत्यादि बाग बगीचे और उनको नष्ट करवा देना, ये सब जो है हमारे अशुभ नाम का ध्यान नहीं जाता इस तरफ, लेकिन वो मास्टर प्लानिंग हो रही है बुलडोजर आएगा सबके आश्रय स्थलों को तोड़ ताड़ करके एक तरफ रख देगा, करो भैया अपन समर्थन करो तो अपना भी अहित, बहुत समय के जीने का है मामला, संसार कहां जा रहा है किस तरफ जाने दे अपन अपना लोटा छाने, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, तो क्या आप संसार बढ़ाना चाह रहे हैं क्या, वही तो संसार घटाना चाह रही हूं, तो अपना काम जरा होशियारी से जिम्मेदारी से करना पड़ेगा, जिसके मन में सबके कल्याण के लिए शरीर की क्रियाएं होती हैं, जिसका मन सबके कल्याण से भरा हुआ है, जिसकी वाणी सबके कल्याण के लिए और निरंतर अच्छे वचन बोलती है, वही अपने मन वाणी और शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं और आगे भी उन्हें ऐसी ही शुभ मन वचन और काय की सामर्थ्य मिलेगी। और अगर अपन इससे विपरीत करेंगे तो संकल्प दिया मेरा शरीर कमजोर क्यों हुआ, मैंने मेरा शरीर कमजोर नहीं बनाया, मैंने अपने कर्मों से अपना शरीर कमजोर बनाया है, मुझे अच्छी बुद्धि कहने मिली तो मेरी मां ने मुझे ऐसी छोटी बुद्धि वाला बनाया, वो ऐसा नहीं है। मेरी बुद्धि अगर कम है तो मैंने कभी किसी दूसरे की बुद्धि की प्रशंसा नहीं करी होगी, कभी दूसरे के ज्ञान की प्रशंसा नहीं की होगी, बल्कि उसके बुद्धि को नष्ट करने का उपाय किया होगा, उसके मन को चोट पहुंचाने का विचार किया होगा, जिससे कि मेरे मन को आज और क्षुद्रता ही मिली हुई है, ऐसा विचार करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, कोई एक रामानुज नाम का बालक था बचपन में, तो मन वाणी शरीर सबको मिलते हैं, कौन कैसा उपयोग करेगा ये उस पर निर्भर करता है, उसकी चॉइस पर निर्भर। तो उसको बचपन में और एक यज्ञ भी संस्कार होता है, दक्षिण भारत में तो ये बात होता है, आचार्य महाराज का भी 11-12 साल में हुआ था, मुंजी बंधन कहते हैं उसको, तो उसमें उस संस्कार में मंत्र भी दिया जाता है, जीवन भर गुरु मंत्र इसका जाप करना, जब भी विपत्ति आए तो इससे बचने के लिए है, चाहे शुभ दिन हो चाहे अशुभ दिन हो सब में जाप करना, तो ये मंत्र दिया उनके गुरु जी ने और समझा दिया कि सुनो इस मंत्र के जपने और सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है, बड़ा अलौकिक मंत्र है, और सुनो इसको सावधानी से पढ़ना और अपने आप पास ही चुपचाप रखना, किसी को बताना मत, ऐसा बोल दिया। और छोटा सा बालक, उसने रात भर विचार किया कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये मंत्र अलौकिक है, सब कोई जो भी सुन ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, और एक तरफ कह रहे हैं कि किसी से बताना नहीं, ये दोनों बातें तो समझ में नहीं आई। सो सवेरे से जाकर के छत के ऊपर और मंत्र का जोर जोर से पाठ करने लगे। अब गुरु जी को मालूम पड़ा तो बड़े दुखी हुए, आए बेटे हमने तुमसे कहा था कि ये किसी को मत बताना, ये तो चुपचाप करने का है, पर गुरु जी आपने ये भी तो कहा था कि ये मंत्र बहुत अलौकिक है और जो भी इसे सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि सभी सुन लें जिससे सबका कल्याण हो जाए। गुरु जी ने पीठ थपथपाई कि अब तो जरूर तुम्हारे पास ये मंत्र तुम्हारा ही नहीं सबका कल्याण करेगा जो उसको सुनेगा। भैया मंत्र और कोई बड़ी चीज नहीं है, मंत्र तो सबके पास है, उसमें सामर्थ कौन डालता है, हमारी अपनी सद्भावनाएं सामर्थ डालती है, मन वाणी और शरीर से जो भी करें वो सद्भावना से होकर के करें, तो फिर देखिएगा कि हमारे जीवन में जो मिलेगा वो सब शुभ ही मिलेगा, और दुर्भावना से अगर मन वाणी और शरीर का हम उपयोग करेंगे तो फिर मानिएगा कि हमें भी आगे शरीर वैसा ही मिलेगा। इसी भावना के साथ कि अपन अपने प्राप्त हुए मन और वाणी और शरीर कैसे अपन में प्राप्त किए होंगे, कैसे अच्छी भावना से ये पाए होंगे, इनका आगे सदुपयोग कर लें, हमें मिले हैं इसलिए, और अगर हमें कमजोर मिले हैं तो हम विचार करें कि हमने कुछ ऐसा अच्छा न करा होगा, नहीं करे कोई बात नहीं, अब तो शुरू कर सकते हैं, ऐसा विचार करके अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवार विद्या सागर मुनि महाराज की।